नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने और बाढ़ की दो अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत, राहत तथा बचाव अभियान जारी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भेंट की। वे आज नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक आज शाम नई दिल्ली में होगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होने की संभावना। और कोलकाता में दुरंत का फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज शाम मोहन बगान सुपर जॉइंट्स का मुकाबला ईस्ट बंगाल से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में सड़क संपर्क में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इन परियोजनाओं में द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क UER2 शामिल है। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी में भीड़ भाड़ कम करने की सरकार की व्यापक योजना के अंतर्गत विकसित की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में सड़क संपर्क में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इन सड़क परियोजनाओं से दिल्ली की इनर और आउटर रिंग रोड के साथ साथ मुकरबा चौक, धौलाकुआ और NH9 जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात सुगम हो जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी दिल्लीवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने लोगों के विकास के लिए अथक प्रयास किए हैं।
दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है वो निरंतर जारी है। आज भी हम सभी इसके साक्षी बने हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है कि दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है।
जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज तड़के बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की दो अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। जिले में रात भर हुई भारी बारिश के बीच राजबांक और जंगलोट के जौत घाटी गांव में ये आपदा आई। जिला प्रशासन के अनुसार बादल फटने से प्रभावित जौत घाटी में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि जंगलोट इलाके में अचानक आई बाढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई। इस बीच जौत घाटी से 5 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस, SDRF और स्थानीय वॉलंटियर्स का संयुक्त बचाव अभियान जारी है। कठुआ के जिला विकास आयुक्त राजेश शर्मा सिविल और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बचाव और राहत अभियान की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। भारी बारिश के कारण ज्यादातर जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और ऊज नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। जिला प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और लोगों को नदियों, तालाबों और नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कठुआ में बादल फटने की घटना को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिविल प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल राहत और बचाव अभियान में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी जान माल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है और प्रशासन को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राहत, बचाव और निकासी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शोक संत परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और सभी आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर 2 दिन की राजकीय यात्रा पर आज सुबह काठमांडू पहुंचे। उन्होंने आज सिंह दरबार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। बाद में वे राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा, CPN माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल और विदेश मंत्री आरजू राणा देउवा से मुलाकात करेंगे। श्री मिश्री प्रधानमंत्री विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों विदेश सचिवों के बीच संपर्क, विकास सहयोग और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विक्रम मिश्री की ये यात्रा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की 16 सितंबर को संभावित भारत यात्रा से पहले हो रही है। यूरोप में बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के शासनाध्यक्षकों ने अमरीका में अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त बयान में इस बात पर जोर दिया है कि केवल यूक्रेन की अपना भविष्य तय कर सकता है। बयान में लाथविया, डेनमार्क, एस्टोनिया, आइसलैंड, लिथुआनिया, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन के नेताओं ने घोषणा की कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में और यूरोप के बिना यूरोप के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। बयान में आगे कहा गया है कि न्याय संगत और स्थायी शांति के लिए युद्ध विराम आवश्यक है। इन नेताओं ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन के सशस्त्र सेनाओं या अन्य देशों के साथ उसके सहयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने यूक्रेन को निरंतर सैन्य समर्थन देने की बात भी कही। इन नेताओं ने कहा कि जब तक रूस हमले जारी रखेगा वे रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को संकुचित करने के लिए प्रतिबंधों तथा व्यापक आर्थिक उपायों को और कड़ा करेंगे। इस बीच जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने एक साक्षात्कार में कहा कि यूक्रेन और शेष यूरोप के बिना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई क्षेत्रीय वार्ता न होना अच्छी बात है। उन्होंने कहा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की कल की वार्ता में यूरोप की भूमिका रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन को समझौता करना होगा क्योंकि रूस एक महाशक्ति है जबकि यूक्रेन नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में बैठक के बाद श्री ट्रंप ने यूक्रेन से समझौता करने की अपील की। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमरीका में अलास्का में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात को सही समय पर हुई उपयोगी बैठक बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरह वे भी यूक्रेन युद्ध जल्द समाप्त होने के इच्छुक हैं। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की आज नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी पर चर्चा हो सकती है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत किया है। चुनाव के लिए बृहस्पतिवार तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 9 सितंबर को होगा। ये चुनाव इस पद से श्री जगदीप धनकर के इस्तीफे के कारण हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की आड़ में बिहार विधानसभा चुनाव में वर्तमान मतदाताओं के नाम हटाकर और नए नाम जोड़कर वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। मतदाता अधिकार रैली शुरू होने से पहले बिहार के सासाराम स्थित सुआरा हवाई अड्डा मैदान में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। उधर जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा ने मताधिकार यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। डूरंट कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में आज मोहन बगान सुपर जॉइंट्स का मुकाबला ईस्ट बंगाल से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत की यशस्विनी घोरपड़े ने आज स्वीडन के माल्मो में यूरोप स्मैश टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यशस्विनी ने क्वालिफायर के अंतिम दौर में सर्बिया की इजाबेला लुपुलेस्कू को 7-11, 11-8, 11-8, 11-6 से हराया। आज अगले दौर में घोरपड़े का सामना विश्व की 5वीं वरीयता प्राप्त चीन की वांग यीदी से होगा। इंडोनेशिया में आज सुबह मध्य सुलावेसी प्रांत के पोसो जिले के उत्तरी भाग में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप में करीब 31 घायल हो गए। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा मोचन एजेंसी ने बताया कि ज्यादातर लोग रविवार सुबह एक चर्च में प्रार्थना के लिए गए थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।